शांति। अव्यक्त मुरली, 18 जनवरी 2008, सॉरी 2004। आज की ड्रिल नंबर 14। बस अभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो. कौन सी ड्रिल करो? अभी अभी करो. सब संकल्प समाप्त, सब संकल्प समाप्त. अभी अभी एक सेकंड में ये ड्रिल करो. कौन सी ड्रिल करो? ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने. तो ये आज सारे दिन भर का होमवर्क है. चालू होगा कितने बजे? 8 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक. कितनी बार करनी है ये ड्रिल? 12 घंटे है. 12 घंटे? 14 घंटे. कम से कम 12 बार. एक एक घंटे में एक बार ये संकल्प याद करना है. कौन सा संकल्प? कौन सा संकल्प? ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने. एक अव्यक्त मुरली है 31 दिसंबर 1999. बाप कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो, पास विथ ऑनर बनो, पर कुछ कुछ बच्चे हैं जो अलबेले हैं, जो कहते हैं देख लेंगे क्या होता है. बाप कहते हैं देख लेना क्या होता है. बच्चे कहते हैं बाबा देख लेंगे क्या होता है. बाप कहते हैं देख लेना क्या होता है. बाबा हम आप समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने. ये वाक्य को दोहराना है आज 12 बार. एक एक घंटे में एक बार, और हो सके तो कई बार. ये आज की ड्रिल है. तो आज हम देखेंगे योग की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं. योग की 8 अवस्थाएं हैं. उसमें से अव्यक्त स्वरूप एक अवस्था है. बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बहुत बड़ा पंडित आया, और वो पंडित ऐसा था जिसे सभी भाषाएं आती थी. प्रकांड पंडित, लिंग्विस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, भाषा का ज्ञानी, भाषा का शास्त्री, भाषा की एक एक बात उसे पता थी. और एक भाषा नहीं, कई भाषाएं पता थी, और हर भाषा का व्याकरण भी पता था. और वो चुनौती देता है सभा में, इस सभा में ये मेरी चुनौती है कि आप लोग ये पता करो कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग. ये उसका चैलेंज है. तो सभी अलग अलग भाषा जानने वाले उसके साथ वाद विवाद करते हैं, पर वो हर भाषा में इतना प्रवीण है, इतना निपुण है, इतना दक्ष है कि कोई जान ही नहीं पाता इसकी भाषा क्या है. बिरबल कहता है कि मुझे एक दिन और दो. और वो ठंडी वाले दिन थे, ऐसे ही जैसे अभी आबू में है, कड़कड़ाती ठंड. और बिरबल चुपके से उसके घर में जाता है और उसके नौकर को कहता है, अभी सुबह का समय है. नौकर को क्या कहता है? मंजुबेन, उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालो. और जैसे ही ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, वो कुछ तो बोलता है अपने नौकर को, चिल्लाता है, गुस्सा करता है. बिरबल बस वहां से निकल जाता है. और दूसरे दिन सभा में राजा को कहता है कि इसकी भाषा गुजराती है, क्योंकि जैसे इसके ऊपर पानी डाला गया, इसने बहुत गालियां दी अपने नौकर को. कौन सी भाषा में? गुजराती में. तो चाहे व्यक्ति कितनी भी भाषा जानता हो, पर जब संकट आता है, जब भय की अवस्था होती है, जब एकदम विपदा आती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो जो निकलता है अंदर से, वो मातृभाषा में निकलता है. क्योंकि मातृभाषा अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। जैसे ये मदर टंग है, उसी तरह एक दूसरा शब्द अध्यात्म में है जिसे कहा जाता है स्पिरिचुअल मदर टंग। इसे कहा जाता है आध्यात्मिक मातृभाषा, अलौकिक मातृभाषा, और हमारी अलौकिक मातृभाषा है अव्यक्त भाषा, और हमारी अव्यक्त मातृभाषा है मौन की भाषा, और हमारी अव्यक्त मातृभाषा है परमात्मा प्रेम की भाषा। तो ये भाषा भी चेतना के उस गहरे तलों से निकले, मौन की भाषा, अव्यक्त भाषा। आज की ड्रिल है बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आप समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। मुरली का टाइटल अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों का को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। एक दूसरी अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1993, स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाए, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समृति दिवस कहते हैं। तो अव्यक्त अर्थात क्या होता है? अव्यक्त शब्द का अर्थ, अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं, अव्यक्त अर्थात जो प्रकट नहीं, अव्यक्त अर्थात जो अगोचर है, अव्यक्त अर्थात जो छिपा हुआ है, अव्यक्त अर्थात जो अदृश्य है, अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं, वो अप्रगट है, उसे कहा जाता है अव्यक्त। तो ये है बहुत पुराना शब्द, वेदों में उपनिषदों में भी अव्यक्त शब्द आया है। आत्मा के स्वरूप के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, या वेदांत का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो टोटल 8 अवस्थाएं हैं योग की। सबसे पहला अशरीरी, दूसरा आत्म अभिमानी, तीसरा अव्यक्त, चौथा बीज रूप स्थिति, पांचवा कंबाइंड स्थिति, छठवा देही अभिमानी स्थिति, सातवा विदेही स्थिति, और आठवा फरिश्ता स्थिति। ऐसी 8 अवस्थाएं हैं। सारे दिन भर में इन 8 में से कोई ना कोई स्थिति में हम स्थित रहे। सबसे पहला है आत्माभिमानी। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा जब अपने 8 स्वरूपों में, 7 स्वरूपों में स्थित है, जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ये 7 अवस्थाओं में से किसी भी एक स्वरूप में स्थित होना अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। तो ये अवस्था स्थूल जगत में हो सकती है, सूक्ष्म वतन में अभ्यास किया जा सकता है, या तो परमधाम में, कहीं पर भी। तो अवस्था और कहां अभ्यास की जाती है, ये 2 क्राइटेरिया है हर अवस्था में। तो इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। उसके बाद में अशरीरी, यहां पर दूसरा है अशरीरी स्थिति। ये आत्माभिमानी, दूसरा अशरीरी। अशरीरी स्थिति अर्थात आत्मा शरीर से पूर्ण रूप से अलग है, और यह स्थिति सबसे ज्यादा केवल 2 ही जगह है, एक परमधाम या सूक्ष्म वतन। वैसे तो ये सारे शब्दों के लिए बाबा ने सामान्य अर्थी रूप में प्रयोग किया है, कभी ये कहता है, कभी कुछ कुछ कहता है, अलग अलग कहता है, पर अलग अलग मुरलियों में अलग अलग परिभाषाएं आई है। अशरीरी अर्थात वो इस संसार की अवस्था नहीं है, अशरीरी अर्थात आत्मा जब परमधाम में है तब अशरीरी, या यहां बैठ के अनुभव करना मैं आत्मा परमधाम में हूं अशरीरी हूं, शरीर है ही नहीं, या तो स्थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर है, तो वो हो गई सूक्ष्म वतन की, पर वो भी नहीं कहा जाएगा, कहा कह सकते हैं परंतु वास्तविक अशरीरी अवस्था केवल एक ही स्थान पर है, वो है परमधाम। ये सेकंड। तीसरा है अव्यक्त, जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसको यहां छोड़ दो। अगला है बीज रूप, मैं आत्मा बीज रूप हूं, यह अवस्था केवल परमधाम की अवस्था है, मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में स्थित हूं, जैसे वो बीज है मैं भी बीज हूं, सब समेटा हुआ है, सारे संकल्प समेटे हुए हैं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प बीज हूं। भक्ति मार्ग में दो प्रकार की समाधि है, एक बीज समाधि, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। सबीज अर्थात जिसमें व्यक्ति अभी संकल्प कर रहा है, निर्बीज अर्थात जिसमें संकल्प भी समाप्त हो गए। एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, जिसमें संकल्प विकल्प चल रहे, और निर्विकल्प वो अवस्था है कि जिसमें सब संकल्प धीरे धीरे समाप्त। तो ये बीज रूप स्थिति है। अगली स्थिति है कंबाइंड, कंबाइंड सिंपल है समझने के लिए, ये कंबाइंड स्थिति एक तो परमधाम की है जिसमें हम उसके साथ कंबाइंड है, ये स्थिति सूक्ष्म वतन की भी हो सकती है, संगम युग के धरती पर भी हो सकती है, कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, जहां मैं हूं वहां वो है, वो और मैं हम दोनों क्या है, एक है, हाथों में हाथ डालकर चल रहे छुड़वा हम दोनों कैसे हैं कंबाइंड। यहां तक सब ठीक था, अभी आगे कंफ्यूजन चालू होगा। अगली अवस्था है देही अभिमानी स्थिति। ये क्या अवस्था है, देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा मालिक हूं, ये राजा की अवस्था है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, इसे कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। अगला विदेही स्थिति, अब ये क्या है, करण करावन हार, करा रहा है मैं आत्मा करण हार हूं, या फिर मैं आत्मा करण करावन हार हूं कर्मेंद्रिय द्वारा करा रही हूं, या फिर मैं कठपुतली हूं अपने आप हो रहा है सब कुछ, ये है विदेही अवस्था। एक है, एक बताया सबसे पहले आत्माभिमानी अवस्था, आत्माभिमानी अर्थात आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित है, देही अभिमानी अर्थात जो आत्मा मालिक है, विदेही अवस्था अर्थात करण करावन हार की स्मृति है, उसकी याद में कर्म किए जा रहे, या आत्मा कर्म करण करावन हार में कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही है ये। उसके बाद में अगली अवस्था कौन सी बताई, फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात आत्मा जब दो शरीरों में विद्यमान है, मैं आत्मा, आत्मा दो शरीरों में से एक शरीर को यहीं छोड़ दिया और अब केवल सूक्ष्म शरीर में, हम दो शरीरों में विद्यमान है इस समय, मैं आत्मा ये स्थूल शरीर, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के जो प्रकंपन है उसका बना हुआ जो शरीर है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट बॉडी, कार्प, लाइट का कार्ब, कारण शरीर, अव्यक्त शरीर, अलग अलग नाम दिए गए, एंजेलिक बॉडी, अलग 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 नाम दिए गए। तो आत्मा की वो अवस्था जिसमें आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित है, लाइट के बॉडी में, चमकीली ड्रेस में स्थित है, वो अवस्था है परिष्ठा स्थिति। तो योग की ये आठ अवस्थाएं हैं, सारे दिन भर में इनमें से कोई ना कोई एक अवस्था में स्थित रहना है, आत्माभिमानी, अशरीरी, तीसरा अव्यक्त, चौथा बीज, कंबाइंड, देही अभिमानी, विदेही और फरिश्ता। आज जो हमको अभ्यास करना है वो है अव्यक्त रूपधारी। अव्यक्त रूपधारी अवस्था अर्थात कि जिसमें उन चीजों पर काम करना है जहां हम व्यक्त में हैं, इसमें संकल्प नहीं आएंगे, इसमें वृत्ति नहीं आती है, इसमें कल्पना, इसमें स्मरण, इसमें याद, ये नहीं। अव्यक्त स्थिति बाहर बाहरी चीजों में दिखाई देनी चाहिए, कम से कम 10 चीजों में। अव्यक्त भाव अर्थात अव्यक्त स्थिति अर्थात अव्यक्त रूप अर्थात व्यक्त में नहीं है, अव्यक्त है अर्थात अप्रगट है अर्थात छिपा हुआ है अर्थात दिखा नहीं देता है, जो व्यक्त नहीं, अनमैनिफेस्ट। इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। सबसे पहला बोल, क्योंकि बोल बाहर के है। विचार अव्यक्त विचार नहीं कहते, अव्यक्त संकल्प नहीं, संकल्प अंदर है। अब हम उन पे काम करेंगे सारे दिन भर जो बाहर है, पर हां बाहर की अवस्था का आधार भी अंदर की स्थिति है। बाहर तो परिणाम मात्र है। कोई सोचता है मैं अपने बोल को वश में करता हूं, नहीं होते है। क्यों? क्योंकि अंदर हलचल चालू है, अंदर व्यक्त चालू है, अंदर शोरगुल है। मन के कुरुक्षेत्र में संस्कारों का महाभारत चल रहा है वर्तमान में। काम तो करना है मेन अंदर ही, संकल्प तो अंदर ही है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप समान हम अव्यक्त रूपधारी बने की बने। एक वाक्य है, इसको देखना है, इसको विजुअलाइज करना है, इसको लिखना है, याद कर लेना है, और कई बार याद करना है, कई बार रिकॉल करना है, कोशिश करनी है। ये आज की ड्रिल है। और कितनी बार करनी है आज? ये 12 बार। कितने बजे से चालू करेंगे? 8 बजे से। अगर भूल गया 8 और 9 के बीच तो देवेंद्र भाई क्या करेंगे फिर? और 12 बजे तक ही पूरा ही भूल गए तो क्या करेंगे? कई बार करते रहना है, भूल गए फिर से याद दिलाना है, स्वयं को याद दिलाते रहना है, बार 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 याद दिलाना है। तो व्यक्त बोल, अव्यक्त बोल अर्थात बोल रहे हैं परंतु नहीं, आवाज है, बोल बिना आवाज के कैसे होगा? आत्मा यहां स्थित हो और ये वर्तुल है, परिधि है, परिधि पर हमारे संबंध है, हमारी सेवाएं है, खाना पीना उठना ये सब कुछ है, पर हम स्थित यहां हो, बोल यहां रहे। जो बोल निकल रहे हैं वो अव्यक्त की गहराई से निकल रहे हैं। कल की मुरली में था, जो सारे दिन भर सोचोगे योग में वही याद आएगा, मकान मकान मकान, तो मकान ही दिखेगा बुद्धि में शाम को। इसके लिए क्या करना है? बीच बीच में कछुआ बन जाना है। कल की मुरली में था, दो चीजें करनी है कर्म करते समय, एक तो याद, दूसरा विचार, सागर मंथन। कल की मुरली का लास्ट पैराग्राफ छोटा सा। इनको नहीं, तुमको ही करना है। विचार सागर मंथन करो, केवल वर्कोहोलिक नहीं बन जाना है। काम काम काम, सेवा सेवा सेवा, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, क्योंकि जितना ज्यादा काम उतना व्यक्ति बाह्यमुखी बनता है। इसके लिए कर्म करते हुए, कर्म इस परिधि पर किए जा रहे हैं परंतु बुद्धि केंद्र पर है। केंद्र में स्थित होके परिधि में आना है, और ये जो अंतर है ये कम हो, नहीं तो केंद्र यहां रह गया, अमृत वेला और मुरली, और अभी हम यहां ऑपरेट कर रहे हैं दिन भर जिसका इससे और इसका कोई संबंध नहीं है। सुबह सुबह यहां थे यहां तक, और फिर यहां पहुंच गए अभी दिन में, या फिर सेवा है, या फिर किसी से मिलना है, या फिर टोली है, या भोजन है, या कुछ ना कुछ चालू है, प्रोग्राम है, मधुबन जाना है, ट्रेन में बैठना है, ट्रैवल है, यात्रा भोजन लेना है, पार्टियों को संभालना है। माता कहाँ गुम हो गई, पकड़ो उसको, ला उसको पकड़ के, कहाँ गुम हो जाती है। ये बहुत सारे काम है इधर। ब्रह्मा कुमारियों की गृहस्थी तो बहुत बड़ी है ना, वो लोगों की तो छोटी गृहस्थी होती है, पति पत्नी बच्चे हो गया, यहां तो बात मत पूछो। बड़ी गृहस्थी है, अलौकिक गृहस्थी है, परंतु वो सब करते हुए यहां स्थित रहो। बाबा ने कल की मुरली में कितनी अच्छी बात कही कि मकान मकान सोचते रहोगे तो रात में मकान याद आएगा, इसलिए दिन भर में सेवा करते हुए भी बीच बीच में कछुआ बन जाओ, कछुआ भव, अलौकिक कछुआ भव, विड्रॉ कर लेना है अपने आप को। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, कौन बिजी नहीं है, सभी को सेवाएं है। अव्यक्त महावाक्य 87 की मुरली, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात बहुत व्यस्त है, बहुत ही बिजी है, बहुत मतलब बहुत, इधर फोन बज रहा है, उधर वो बज रहा है, इधर इसको देखना है, उधर उसको देखना है। पब्लिक ब्रह्मा कुमारी अर्थात हम पब्लिक प्लेस में है, पब्लिक सेक्टर है, कुछ भी छिपा नहीं है, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे, सबसे इंटरेक्ट करना है, परंतु वो सब करते हुए भी बुद्धि कहां हो, केंद्र पर, परिधि पर घूमते रहो दिन भर। सुबह तो केंद्र में, शाम को भी केंद्र में, रात में भी केंद्र पर, दिन भर परिधि में घूमते हुए भी बुद्धि केंद्र पर हो। तो सबसे पहला अव्यक्त स्वरूप है बोल, जो बोले वो अव्यक्त बोले, जो बोले वो अव्यक्त की गहराई से निकल रहे, जो बोल रहा है वो अंदर से निकल रहा है, इसीलिए उन शब्दों में पावर है, जौहर है। मुरली सुनाना है उसकी तैयारी चाहिए, फिर क्लास कराना है उसकी तैयारी चाहिए। बिना तैयारी के बैठ गए और बिना मुरली पढ़े ही सीधा मुरली चलाना चालू कर दिया, पता तो नहीं चलेगा किसी को, पर खुद को तो पता चलेगा कि वो पावर नहीं है आज जो होनी चाहिए। बताने वाले को दिखाई देता है जो तीर निकल रहे हैं वो चुप रहे उधर, बताने सुनाने वाले को दिखे कि कैसी आत्माएं घायल हो रही है सामने, दिन दहाड़े तीर चल रहे हैं। बोल अव्यक्त से निकले। दूसरा कर्म अव्यक्त से निकले। कर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, स्थूल सेवाएं है, रोटी सब्जी कुछ भी इस तरह की, यहां से वहां चीजों को उठा के रखना, कमरे को साफ करना, कर्म हो रहे, परंतु कर्म करते हुए भी बुद्धि अंदर जुड़ी है तार, उस केंद्र पर, मैं आत्मा हूं, मैं अव्यक्त रूपधारी हूं, मैं अव्यक्त रूपधारी हूं, मैं अव्यक्त रूपधारी हूं। हम आप समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, बने कि बने, अंदर में आर्तनाद गूंज रहा है, गूंज है अंदर गूंज। तीसरा चलन अव्यक्त चलन। अव्यक्त चलन अर्थात भाग दौड़ नहीं, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे नहीं निकलेगी ट्रेन हम दिन भर की बात करें, कोई विशिष्ट एक परिस्थिति की नहीं, सारे दिन भर की, क्योंकि किसी किसी के संस्कार होते हड़बड़ी, हर चीज जल्दी 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 करो, जल्दी करो, हर चीज जल्दी करो, और वहां जाके फिर 2 घंटा रुको चलो ये भी ठीक है, परंतु हड़बड़ी के संस्कार है, हर चीज में जल्दबाजी करना, हरी हरी हरी, हर चीज में भागना। चीन का दार्शनिक है लाओत्से, उसने लिखा है, मैं जब संसार को देखता हूं, एक मनुष्य ही है जो दिखता है मुझे भाग रहा है पागलों जैसा, पूरी धरती को देखता हूं कोई नहीं भाग रहा है, सूरज देखो कैसा अच्छे से चल रहा है अपने चाल में, चंद्रमा देखो कैसे जा रहा है, ये झाड़ कोई नहीं भाग रहा है इधर, ये मनुष्य ही भाग रहा है, इसको ही सबसे ज्यादा जल्दी है, पता नहीं किस बात की जल्दी है, कहां पहुंचना है, बाकी कोई नहीं भागता है, सब शीतलता से चल रहा है संसार में, स्थिरता से चल रहा है। मनुष्य पागलों जैसा भागता है, क्यों भागता है पता नहीं उसको, और भागते रहता है। तो चलन अर्थात चलना, उठना, बैठना धीरे से, आराम से, रॉयल्टी वो कैसा दिखेगा? कोई ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार भाग रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। बाबा ने कहा तुम परिवर्तन के दर्पण हो, तुम्हारी संतुष्टता। संडे की मुरली, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखने वाले। जो नए लोग आते हैं सब लोग देख लेते हैं, ये भी देखते हैं इनमें कितना अहंकार है, अभिमान है, ये भी देखते हैं कितने निरंकारी है, हर चीज नोट करते हैं। जैसे छोटे बच्चे नोट करते हैं हर चीज बड़ों की, वैसे यहां आने वाले हर चीज देखते हैं, उनको सब दिखाई देता है, इतना सब कुछ है परंतु फिर भी निरंकारी है, देख लेते हैं। तो चलन भी कैसी हो? अव्यक्त, अर्थात जल्दबाजी नहीं, अर्थात फटाफट उठना, फटाफट भागना, भागते भागते अमृत वेला, वो भी एक जल्दबाजी का संस्कार है। क्या करना है? बाबा के कमरे में पहुंचना है, ये ठीक है, पर उसके पहले 15 मिनट इतनी जल्दबाजी है, फटाफट 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 करवा, चलना है चलना है चलना है। मतलब योग हमारा चालू कहां हो रहा है? बाबा के कमरे में पहुंचकर। चालू कब होना चाहिए? उठते ही चालू हो जाना चाहिए, फिर भागने की क्या जरूरत है? वो भी एक हड़बड़ी का संस्कार है। और जहां जल्दबाजी करनी पड़ती है जरूर फिर प्लानिंग में गड़बड़ है, तो फिर जल्दी उठो। फिर हर बार मीटिंग में पहुंचने में देरी होती है, हर बार किसी किसी की आदत होती है ना, भाग के ही पहुंचते हैं। किसी किसी की आदत है ट्रेन जब भी पकड़ेंगे ना, भाग के ही ट्रेन पकड़ी, हमने पैर रखा और ट्रेन चालू। हड़बड़ी का संस्कार, तो उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। फिर तो चलन भी कैसी हो? अव्यक्त। उसके बाद में सुनना, अव्यक्त। जितना शांत मन से कोई क्लास, कोई मुरली, कोई बात सुनते हैं या किसी को सुनते हैं, उतना बहुत गहराई से वो अंदर चला जाता है। बिल्कुल चुप होके सुन रहे, क्या कह रहा है, तो वो जो बातें हैं वो बहुत गहराई में चली जाएगी। तो सुनना भी अव्यक्त। उसके बाद में देखना, एक होता है फटाफट देखना, एक है अव्यक्त रूप से देखना। अव्यक्त रूप से देखना अर्थात बहुत निरीक्षण करना, जैसे कोई पहाड़ को देख रहे तो बहुत धीमी गति से देख रहे, आनंद ले रहे उस निसर्ग के सौंदर्य का। पर लोग क्या करते हैं, यहां पर आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? सेल्फी। निसर्ग रह गया बाजू में, फोटो रह गया बाजू में। पीस पार्क में आते हैं लोग क्या करते हैं सबसे पहला काम? ऐसे कौन होगा जो आराम से केवल बैठे और देखे कितना सौंदर्य है। क्या करना है हर एक को? फोटो लेना है। और बाद में क्या करते हैं? फोटो को कभी देखते हैं? कभी नहीं, पड़ा रहता है वो, दिखाते हैं कि हम वहां जाके आए, जो कल हमने पूरा सुना डिजिटल शिष्टाचार, वो भी माया है कि हम वहां जाके आए। बेचारा सोचता है सामने वाला मैं कब जाऊंगा। वहां जाके आए, ताजमहल देख के आए, वो सोचते हैं हमको हमको कब जाने मिलेगा। दुखी होता है। तो देखना हमारा कैसा हो? बहुत अव्यक्त। मधुबन के आंगन में बैठना है और मधुबन को देखना है। संडे की मुरली, मधुबन निवासी क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? एक स्थान पर बैठे है, श्रेष्ठ स्थिति के निवासी है। मिलन कैसे हो रहा है आत्माओं का? देखना है, हमें देखने का समय नहीं है, हम भाग रहे। मधुबन में रहते हुए भी तो मधुबन को देखने का समय नहीं है, मधुबन में रहते हुए भी मधुबन से अपदस्थ है, कहीं दूर है। मधुबन में है ही नहीं, ऐसा भी है। वो जहां रह रहे हैं उसको भी साक्षी होकर देखना है। एक अंग्रेजी कवि W.H. डेविस ने कहानी लिखी है लीजर. ओ व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड काउ अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. वो लिखता है कि कैसा जीवन है ये, समय ही नहीं है किसी के पास. वो देखो गाय कितनी आराम से खड़ी है और देख रही है सब कुछ. वैसे क्यों नहीं देख पाते तुम गाय की तरह. स्टैंड एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउ केवल भाग रहे, कुछ भी देखने को समय नहीं है. देखना है नकी घूम रहे तो नकी को देखना है. सूर्यास्त हो रहा है सूर्यास्त को देखना है. बाबा के सामने बैठे तो बाबा को देखना है. केवल बाबा को देखना नहीं होगा, वो आदत सब जगह हो तो एक वहां पर भी अपने आप अप्लाई होगी. हम कहते हैं केवल बाबा को देखना है और वहां बुद्धि भटकती है. हर चीज को अव्यक्त होकर देखना है. ओम शांति भवन में क्लास में बैठे अव्यक्त होकर देखना है पूरे सभा को. कौन सी सभा है सोचो, अगर इसी सभा में बाबा आ जाए तो क्या महावाक्य उच्चारण करेंगे. आज बाबा किसको देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं वैसा देख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं मोबाइल किसका बजा. कितनी बार बता फिर भी बजता है इसका मोबाइल. यही सारे संकल्प चल इसका मोबाइल बजा. वो ऐसा करता है, वो फिर आके बैठा. धारणा तो कुछ है नहीं, वो मुरली में बैठ रहे. एक मुस्लिम व्यक्ति इतना उदास हो जाता है, खुदा से नाराज हो जाता है, छोड़ देता है सब कुछ. प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है उदास. एक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है नमाज का समय हो गया है, क्या मेरा सामान देखोगे, मैं नमाज पढ़ के आता हूं. वो कुछ नहीं कहता है, ठीक है. वो व्यक्ति नमाज पढ़ के आता है और फिर कहता है ये लो 20 रुपए तुमने सामान की रखवाली की. फिर उससे पूछते क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते, माफ करना पर पूछ रहा हूं. तो वो व्यक्ति कहता है मैं 20 रुपए की नमाज नहीं पढ़ता. उसको एकदम से हॉट होता है. और वो जो बैठा रहता है कुली, दूर जाके बैठ जाता है, वो युवक कुली होता है. ये व्यक्ति वापस उसके पास जाता है, कहता है मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, मैंने सही में गलती की, मैंने कीमत लगाई. और फिर दोनों का वार्तालाप चालू होता है. वो कहता है मैं जानता हूं कि मैं रटी रटाई नमाज पढ़ रहा हूं, वही कुरान की आयतें रट रहा हूं, परंतु फिर भी जा तो रहा हूं ना, महबूब को पता तो चले हम आए हैं. अगर वो प्रेजेंट ही लगाए तो हम कहें प्रेजेंट सर. ये बात उस युवक को एकदम दिल को छू जाती है. महबूब को पता तो चले कि हम हैं. अगला तो सबसे पहला बोल, फिर कर्म, फिर चलन, फिर देखना, फिर सुनना, फिर स्पर्श करना. हमारा चीजों को स्पर्श करना भी अव्यक्त हो. भोजन की थाली ले रहे आवाज कम से कम, ग्लास ले रहे आवाज कम से कम. कई बार हमने देखा है चाय पी के हो गई, वो जो ग्लास है ना फेंकते हैं उसमें. किसी भी चीज को फेंकना नहीं है, किसी भी चीज को. ये एक अभ्यास है. ये पेन है, ये रखना है, फेंकना नहीं है. ड्रावर खोला चाबी फेंकी, किसी भी चीज को चोट नहीं लगनी चाहिए. एक जर्मन फिलोसोफर भारत में आता है एक योगी से मिलने. योगी के कमरे के पास आता है और अपने जूते पटकता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं आपके दर्शन के लिए, केवल आप कुछ बोले मुझे कुछ मार्गदर्शन करे. वो कहता है करूंगा, पहले जाके माफी मांग के आओ. वो कहता है किससे, वो कहता है जूते और दरवाजे से. वो कहता है क्या बात कर रहे हो, उनमें कोई जीव है, कोई चेतना है जो मैं माफी मांगू. वो कहता है जब तक माफी नहीं मांगूंगी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ पहले. तो वो फिलोसोफर जाता है, हे मेरे जूते मुझे माफ कर दो, हे दरवाजा मुझे माफ कर दो. उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा कि जब मैंने ये किया पहली बार सुकून का अनुभव हुआ. तो चीजों को अव्यक्त रूप से स्पर्श करना है, क्योंकि देहभान में स्पर्श करना वासना होती है। किस रूप से स्पर्श किया जा रहा है? अव्यक्त हमारे हाथों में अव्यक्त, हमारा स्पर्श अव्यक्त हो, क्योंकि स्पर्श से पता चल जाता है सामने वाले को किस भाव से स्पर्श किया है व्यक्ति ने। वासनायुक्त स्पर्श क्या है, देहभान वाला स्पर्श क्या है, इच्छा वाला स्पर्श क्या है, और निस्वार्थ प्रेम युक्त मां का जैसे स्पर्श होता है बच्चे का, बच्चे के लिए वो स्पर्श, तो हमारा स्पर्श भी कैसा हो, अव्यक्त। उसके बाद में हमारा खाना भी कैसा हो, अव्यक्त। उस दिन हमने खाने के मेज के शिष्टाचार देखे थे, खा रहे आवाज कर करके खा रहे, उसमें ऐसा है कि अगर कोई वस्तु ऐसी है कि जिसका आवाज होता ही है तो क्या किया जाए, मुंह बन के खाया करके खाया जाए फिर उसको, कम से कम आवाज हो, हमारे खाने का आवाज ना हो, बैठते हैं तो आवाज ना हो, चबाने का आवाज ना हो जाता, चूस चाय या इस तरह चूस वो कुछ भी पीते उसका भी कुछ आवाज कम से कम हो, कुर्सियों का आवाज कम से कम हो, प्लेट्स का आवाज कम से कम हो, चम्मच का आवाज कम से कम हो। अव्यक्त रूप में भोजन स्वीकार करना है, जितना ज्यादा आवाज उतना अर्थात। कल की मुरली क्या थी, प्रण करो अपने आप से, क्या भोजन बाप की याद में खाएंगे, नहीं खाया तो माया खा लेगी, फिर माया का समान है मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माया को खिला के बाप को खिला के। तो भोजन खाना भी अव्यक्त, उसके बाद में सोना भी अव्यक्त, हमारा सोना भी कैसे हो, अव्यक्त हो। चलो वो हमारे वश में नहीं है, परंतु फिर भी सोना, हमारी सोने के वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। वो अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, कुछ दवाई देंगे या कुछ बताएंगे क्या करना है, पर डिस्टर्बेंस ना हो दूसरों को हमारे सोने की वजह से। सोना अव्यक्त हो तो सोना भी अव्यक्त, स्पर्श करना भी अव्यक्त, सुनना भी अव्यक्त, देखना भी अव्यक्त, खाना भी अव्यक्त, चलन अव्यक्त, बोल अव्यक्त, कर्म अव्यक्त, कितने हो गए, 8। और क्या अव्यक्त हो, और दो बातें बताओ। लिखना भी अव्यक्त, लिखना अव्यक्त अर्थात टाइप करना अव्यक्त, क्योंकि अव्यक्त रूप में जो लिखेंगे वो सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस वर्तमान कौन सा चल रहा है, मैसेजेस, रिश्ते किससे टूट रहे हैं, मैसेजेस, तो हमारा लिखना भी कैसा हो, अव्यक्त। तो आज ये ड्रिल करनी, और एक चीज बताओ जो अव्यक्त है, और एक चीज बताओ, संबंध संपर्क अव्यक्त, हमारे संबंध अव्यक्त में आवाज ना हो बहुत ज्यादा, शोरगुल ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, हाँ जितना हो सके इशारे, इशारे में समझ लेना, संबंध में संपर्क में, जिस संबंधों में बहुत आवाज है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो जाता है, दुर्गति होती है उसकी, वो इधर से कुछ बोलता है, हर चीज में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, कहीं कहीं मौन ही उत्तर होता है, किसी ने कुछ कहा, पति ने पत्नी को कुछ कहा, जरूरी नहीं है पति हर बार उत्तर दे, मौन, क्योंकि झगड़ा तो इससे होता है ना, बोल से ज्यादा। तो ये दसों के दसों बातें क्या हो, अव्यक्त। तो आज हमारा ड्रिल कौन सी है, अभी सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, ओ पहले ओ तो बोलना ही नहीं, पहले ओ बोलना है, बोलो वैसे नहीं, अच्छे से बोलो जरा, ओ बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। तो आज पूरी 12 बार यह ड्रिल करनी है, 8 बजे से चालू करना है, तो रात को दस बजे के बीच में कई बार करते रहना है। बाबा मीठे बाबा हम आप समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, बोल अव्यक्त, कर्म अव्यक्त, चलन अव्यक्त, सुनना अव्यक्त, देखना अव्यक्त, खाना अव्यक्त, स्पर्श अव्यक्त, लिखना अव्यक्त, संबंध संपर्क अव्यक्त, सोना अव्यक्त, सब चीजें अव्यक्त हो। अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, फिर से बाबा की आवाज सुनेंगे।